यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुब्रह जी महाराज द्वारा दिनांक 2/12/93 प्रातः 8:30 बजे दिल्ली में हुआ।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
रामायण में दो बात आती है, एक एक से विरुद्ध। एक जगह तो आया है कि पंच ऋषिदेह अधम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ने क्षितिज पाव गगन समीरा, पंच ऋषिदेह अधम शरीरा। और ये जो आया है सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जाचत देही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। त्रिवेदी इसकी प्रशंसा आई है। जब गुरु जी ने कहा से पूछा है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, वो श्रेष्ठ शरीर तो क्या मानव शरीर है, इसके समान दूसरा कोई शरीर नहीं है। और पहले प्रसंग आया है उसमें है बाली के प्रसंग में, उसमें कहा है कि ये पंच रति ये अधम शरीर, तो ये शरीर अधम है उत्तम है क्या है, दोनों बात आती। इससे एक बात सिद्ध होती है जो आपके हमारे सबके बड़े काम की चीज है वो सिद्ध होती है। तो शरीर की जहां महिमा की है वहां भी बात आई है, जैसे पंचरत्न यह अधम शरीर बताया ऐसी बात वहां भी कही है कि सबसे ये शीर्ष शरीर है, इससे नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, इससे नरक प्राप्त हो सकते हैं स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, उससे मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है और ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वैराग्य प्राप्त हो सकता है और श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है वो प्राप्त हो सकती है। उसने भी नरक समझाया है और शरीर को अधम बताया है, तो तात्पर्य क्या है? वो तात्पर्य समझने से बड़ा लाभ होता है। कोई भी वस्तु बढ़िया और घटिया नहीं है, उस वस्तु का सदुपयोग है वो बढ़िया है और दुरुपयोग है वो घटिया है। उपयोग में लाना, ठीक तरह से उपयोग में लाना है वो श्रेष्ठ है। तो महिमा सदुपयोग की है। स्वास्थ्य है उसका सदुपयोग किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, दुरुपयोग किया जाए तो पतन हो जाए। बीमारी का सदुपयोग किया जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। स्वास्थ्य ऐसे धनवत्ता है वो परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है, धनवत्ता है वो प्राप्ति हो, धनवत्ता अधम जोड़ी में प्राप्ति करा दे। अच्छा उपयोग किया जाए उसकी महिमा है। तो ये एक ऐसी विद्या है विलक्षण, कैसी ही परिस्थिति क्यों हो उसी में मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है। परिस्थिति के अधीन अपना उद्धार और अपना पतन नहीं है। अपने सदुपयोग से उद्धार है, दुरुपयोग से पतन है। तो कैसी ही परिस्थिति आ जाए, सुखदायी आवे चाहे दुखदायी, परिस्थिति का उपभोग नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है। उपयोग भोग करने से पतन होता है, उपयोग करने से सदुपयोग करने से उन्नति होती है। तो मानव शरीर की महिमा अधिक क्यों गाई गई है, इससे परमात्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है, मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा की श्रेष्ठ भक्ति इससे प्राप्त हो सकती है, इसलिए इसकी महिमा है। और इस शरीर में आकर दुरुपयोग किया जाए तो नरकों की प्राप्ति होती है, 84 लाख जोनी की प्राप्ति होती है, महान भयंकर दुखों की प्राप्ति होती है दुरुपयोग करने से। तो मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है, महिमा वास्तव सदुपयोग भी है। और सदुपयोग और दुरुपयोग करना अपने अधीन की बात है, शरीर मिल जाए ये हमारे हाथ की बात नहीं है, मानव शरीर प्राप्त कर ले ये हमारे हाथ की बात नहीं, परिस्थिति को बदल दे हाथ की बात नहीं। एक बात विशेष ध्यान दें आप, मनुष्य प्रायः परिस्थिति बदलने की चेष्टा करता है, निर्धनता है तो धर्मत्ता हो जाए, यहाँ पर दुखदायी की सामग्री है तो दुखदायी सामग्री मिटकर सुखदायी की सामग्री हो जाए, ऐसे परिस्थिति को बदलने की चेष्टा करता है, तो वो बदल सकता नहीं है, इस वजह से दुख होता है। हम चाहे जो हो जाए हाथ की बात नहीं है, परंतु उसके सदुपयोग करने की स्वतंत्रता है, इसमें पराधीनता नहीं है। निर्धन आदमी धनवान बन जाए ये हाथ की बात नहीं है, पर निर्धनता है उसका सदुपयोग करना हाथ की बात है। और होता है उद्धार सदुपयोग से, शरीर से नहीं होता। तो सदुपयोग क्या है, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों के हित के लिए चेष्टा करना है, ये हरेक परिस्थिति का सदुपयोग है। और दूसरों की परवाह ना करके अपने सुख आराम मान आदर बढ़ाई की इच्छा रखना है, ये दुरुपयोग में जाना है। तो इस बात को प्रायः लोग जानते नहीं है, इधर ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग कृपा करें इस तरफ ख्याल करें, जरा अपने स्वार्थ के लिए चेष्टा करना है, ये बुद्धिमानी नहीं है। ये तो पशुओं में ही है, पक्षियों में भी है, वृक्षों में भी है, जो कि कुछ कर नहीं सकते स्थावर जो नहीं है उनमें भी है सुख दुख का भोग। वृक्षावली पर अगर अधिक घाम पड़े जल नहीं मिले तो कुमला जाती बल जाती है वृक्षावली, और जल अच्छा मिले अनुकूल खाद मिले तो प्रफुल्लित हो जाती है। तो राजी नाराज होना ये चीज कोई दामी नहीं है, ये तो पशुओं पक्षियों में वृक्षों तक में ये जो स्थावर है जंगम में है, सब जगह गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, कुत्ता है, हाथी है, भैंसा है, गाय है, इनमें भी ये बातें हैं। ये राजी नाराजी सुखी और दुखी होते रहते हैं। अरे मनुष्य भी इसी तरह से सुखी और दुखी होता रहे तो मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है। ये पशु पक्षी आदि सदुपयोग नहीं कर सकते, वे भोगियों नहीं है, पूर्व के किए हुए कर्मों के अनुसार उनको परिस्थिति मिलेगी, उस परिस्थिति का उपयोग उपभोग कर सकते हैं वे, परंतु सदुपयोग करके उन्नति नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर में एक विलक्षणता है कि ये परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकता है, सदा के लिए सुखी हो सकता है, सैकड़ों हजारों आदमियों का कल्याण कर सकता है, इतनी योग्यता इसमें है, कितनी योग्यता बढ़ा सकता है जिसमें पार नहीं है। जैसे ये पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, ये उदय होते उगते हैं तो धूप भी ऊपर बढ़ती है, मगर थोड़ी थोड़ी बढ़ करके रह जाती है, वही होती हो जाती है। और घास के और धान के पौधे होते थोड़े थोड़े बढ़ते हैं, और नीम है, आम है, ये बहुत बूढ़े हो जाते हैं, और ताड़ और खजूर नारियल बहुत ऊंचे बढ़ जाते हैं। ताड़ आकाश की मना नहीं है, धूप के लिए आकाश मना नहीं करता कि ऊपर मत बढ़ो भाई, यहाँ तक रहो, और तू ताड़ को भी मना नहीं करते भी इतने बढ़ गए अगर ही मत बढ़ो, ऐसा जितनी बढ़ी जाए तो वो तो बढ़ सकते हैं उस आकाश में, पर मनुष्य बढ़ सकता है अपनी उन्नति में, परमात्म तत्व की प्राप्ति में। ये योग्यता मनुष्य में है और में नहीं है। तो मनुष्य की जो महिमा है वो महिमा शरीर की नहीं है, ऐसा पुतला हो, दो पैर चलने वाला हो, लंबा हो, ऊपर मस्तक काढ़ा हो, ऐसा हो, मनुष्य हो, इसकी महिमा नहीं है। इसके सदुपयोग की महिमा है, सदुपयोग करने में अपने बुद्धि की महिमा है। तो इसमें एक विवेक शक्ति है, उस विवेक शक्ति का सदुपयोग किया जाए तो अपना और दुनिया का उद्धार कर सकता है। वही बुद्धि, वही आपका विवेक, उसका उपयोग किया जाए बम बनाने में, एटम बम बनाने में उपयोग किया जाए तो लाखों का नाश कर सकता है, अनेकों का हत्या कर सकता है। बुद्धि वही बुद्धि एक ही है, वो विवेक शक्ति एक ही है, उसका उपयोग किस में करता है, वो लोगों की उन्नति में करता है कि अवनति में करता है, लोगों के हित में करता है कि अहित में करता है, और इसमें करने में स्वतंत्र है। संपत्ति प्राप्त हो जाए, मान प्राप्त हो जाए, सब जगह हमारी बढ़ाई हो जाए, निरोगता प्राप्त हो जाए, इसमें इतना स्वतंत्र नहीं है, परंतु इसका सदुपयोग करके परमात्म तत्व की प्राप्ति कर ले, इसमें बिल्कुल स्वतंत्र है, इसमें पराधीनता नहीं है। इसमें पराधीनता है स्वभाव की, अपनी जो आदत है, अपना स्वभाव है, अपनी एक प्रकृति बनी हुई है, एक ऐसे वो है, वो बदलनी पड़ती है, वो बदले बिना सदुपयोग नहीं होता। तो प्रकृति की परवशता है, स्वभाव की परवशता है, पर उस स्वभाव के सुधारने में ये स्वतंत्र है, अपना स्वभाव निर्बल बना दे। महान मूर्ख भी विद्वान बन सकता है, सवार नीचा, बहुत हत्या करने वाला, पाप करने वाला, चोरी करने वाला, डाका डालने वाला संत बन सकता है, महात्मा बन सकता है, तत्व के जीवन मुक्त बन सकता है। तो इसमें ये ताकत है, एक सदुपयोग करने की आवश्यकता है, दुरुपयोग दूर करना, सदुपयोग करना, अच्छे काम में लगाना, उत्तम से उत्तम काम में अपने को लगाना, अपनी बुद्धि को उधर लगाना, इसमें ये स्वतंत्र है, इतना बड़ा भारी लाभ ये ले सकता है। तो ये सत्संग आदि जो समारोह होता है, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य हम अपने बुद्धि का सदुपयोग करें। ये बातें बताई जाती है कि धन से आप अपनी उन्नति करें, और वो उन्नति लोगों ने मानी है कि धन हो जाए उन्नति हो जाएगी, धन से वास्तविक उन्नति नहीं होती है। उन्नति बुद्धि का विकास करके परमात्मा की तरफ चलने में उन्नति मानी जाती है। धन बहुत हो जाए पर चित्त में शोक है, चिंता है, भय है, उद्वेग है, हलचल है, तो धन नहीं मिटा सकता, चिंता शोक को धन नहीं मिटा सकता, सत्संग से शोक मिट जाता है। ये हमने देखा है, ये केवल पुस्तकों की बात हो ऐसी बात नहीं, पुस्तकों में तो है ही विवेचन इसका, परंतु हमारे आचरण में आता है कि अच्छा संग मिलने से चिंता, भय, उद्वेग, हलचल ये मिट जाते, शांति मिल जाती है, आनंद मिल जाता है, संतोष मिल जाता है, वैराग्य हो जाता है, त्याग हो जाता है, सुख हो जाता है, अपने को और औरों को भी ये सुख दे सकता है, आराम दे सकता है, सत्संग के द्वारा बड़ा भारी उपकार कर सकता है। भागवत के वो पंचराश पंचाध्याय में गोपी गीत आता है, उसमें आया है कि आप जो तव कथा मृतम, आपकी जो कथा मृत है, भगवान से कहती है गोपी गाये, गीत गाती है, जय ते ते देखम जन्म ना ब्रज शयत इंदिरा सरस्वत ही। तो उसमें ये बताया है, तव कथा मृतम तप्त जीवनम कवि विरीडतम कल्म शापहम। श्रवण मंगलम श्रीवदा ततम भूमिघ्नती थे भूरिदा जना। तो वे कहा कि आप जो कथा है वो अमृत है, बड़े बड़े विद्वान भी जो गाते हैं स्तुति करते हैं, संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है, लक्ष्मी शोभा प्राप्त करती है, ऐसे जो संसार में आप कथा वो कहते हैं भूरी दा जना, उनको बताया है कि ये बहुत बड़ा दान करने वाले है, भगवान की कथा गाकर ये बड़ा दान करने वाले। नहीं तो दान तो दिव्य हो पास में तो कर सकते हैं, धन नहीं तो दान कैसे करें। कि धन का दान करने वाले भूरी दा नहीं होते, वे दान धन दान होते, धन दान कर सकते हैं। भूरी दा जना भूषी दक्षिणा होती है, भूरी दान होता है वो बहुत बड़ा दान। तो बचाइए जिसके पास कोई पैसा नहीं वे भी बड़ा भारी दान कर सकते हैं। आदमी को आश्चर्य आता है कि जिसके पास कोई नहीं पैसा नहीं वो दान कर दे, और ये बहुत बड़ा दान कर सकते हैं वो। अब बिचारिए कितनी विलक्षणता है, कितनी योग्यता है, कितनी एक विचित्र बात है, कितनी स्वतंत्रता है। धन के बिना हम दान कर सकते हैं और बड़ा भारी दान कर सकते हैं। कब? कि भगवान के गुण गावें, भगवान के यश गावें, भगवान नाम का कीर्तन करें, भगवान में लग जाए, बड़ा भारी दान होता है। अभी हम वृंदावन में थे तो शाम की वक्त में हम पदगान और कीर्तन किया करते थे। सब लोग कहते थे कि बड़ा आनंद आया, बहुत विलक्षण, मनुष्य जन्म की सार्थकता हो जाए, इतना आनंद आता था। कोड़िए का खर्चा नहीं, रुपए दो रुपया नहीं, कोड़ी का भी खर्चा नहीं, और इतना आनंद के लाखों रुपया हजारों रुपया करोड़ों रुपया दे दे तो वो आनंद नहीं मिलता, वो आनंद मिलता था। तो ऐसा आनंद दान मनुष्य कर सकता है, कितनी विलक्षणता है। जिस धन से द्रव्योग धन से किया जाए तो दान कर सकते, बिना धन के दान कर सकते हैं। भगवान की बात कहे, भगवान की बात सुनावे, भगवान के पद का गान किया जाए, भगवान के गुणों का कीर्तन किया जाए, कथन किया जाए, तो कितनी विलक्षणता है। संसार के ब्रह्मा आदि के पद, इंद्र आदि के पद जितने ऊंचे हैं उनसे ऊंचा पद उसको प्राप्त हो जाए इस जीवन में जीते जी मनुष्य जन्म में। जो त्रिलोकी का राजा इंद्र माना जाता है उस इंद्र से विलक्षण आनंद अभी वर्तमान में आप और हम ले सकते हैं। इतनी विशेष उन्नति हम कर सकते हैं अपने समय का सदुपयोग करने से। समय तो लगता है, उसमें क्या होता है, अपना उद्योग है, समय है, बुद्धिमानी है, परमात्मा को सामने लेकर चले तो कितना उद्धार, कितना कितनी उन्नति हम कर सकते हैं। तो इसमें सब स्वतंत्र है, इसमें पराधीन नहीं है। स्वभाव कुछ बना हुआ होता है वो बीच में बाधा देता है, पर स्वभाव का सुधार भी तो इसी से ही में होता है, और जगह स्वभाव सुधार करने की जगह नहीं है। गाय बड़ा ही पवित्र प्राणी माना जाता है, जिसका गोमूत्र और गोबर भी पवित्र करने वाला है, ऐसी पवित्र है, परंतु उसको समझा करके आप बता नहीं सकते, ब्रह्म विद्या दे नहीं सकते। मनुष्य में जो समझने की शक्ति है, इसके जो वास्तविक उन्नति करने की शक्ति है, वो शक्ति उसमें नहीं है। शरीर बड़ा पवित्र है, देवताओं का ऊंचा बड़ा भारी पद है, बड़ी भोग सामग्री है, बड़ा सुख है, वह आराम मिलता है, ये सब कुछ मिलता है, परंतु मिलने पर भी देवता अपना उद्धार कर रहे, इसमें इतने स्वतंत्र नहीं है, वह इतना अधिकार नहीं है, मना नहीं है। वहाँ भी देवताओं में भी देव ऋषि नारद हुए, देवताओं में ऋषि हो गए नारद जी महाराज, तो ऐसे वे भी उद्धार कर सकते हैं। परंतु मनुष्य में जितनी अधिकारिता है, इसको जितना एक अधिकार दिया है, योग्यता दी है, इसको छूट दी है, एक विलक्षण अधिकार दिया है। अब शब्द नहीं आता, क्या शब्द कहूँ मैं, कोई शब्द बताओ भाई। इनको उन्नत होने के लिए जो अवकाश दिया गया है, इसको जो बुद्धि दी गई है, इसको एक ऐसा मौका दिया गया है कि जिससे ये उद्धार कर सकता अपना, ऐसा मौका देवताओं को नहीं मिलता, ऐसा अवसर उनको नहीं मिलता, ऐसी योग्यता इतना अधिकार मनुष्य को दिया है। बट ये शब्द आया नहीं है अब तक, मैं जैसा खोजता हुआ शब्द मिला है जी। स्वतंत्रता यही है, मानो उन्नति करने के लिए, एक उन्नति करने के लिए इसको जो अवकाश दिया, एक अधिकार दिया गया, अधिकार शब्द है, तो इसको अधिकार, वो अधिकार देवताओं को नहीं है। ये भगवान की उदारता है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए मना नहीं है। पशु पक्षियों में संत हुए हैं, वृक्षों में संत हुए हैं, हाथी संत है, गजराम दास एक हाथी थे, बैराग्य बाबा की मंडी में रहते थे, गजराम दास बड़े संत हुए, वो हाथी था, हाथी संत हो गया है, कौआ संत हुआ, गागभूषण जी गीत संत हो गया, गीतराज, तो ये उनमें भी संत हुए, तो संत उनकी मना ही नहीं है, पर अधिकार नहीं है वहां, अरे मनुष्य को अधिकार है, इसको अधिकार दिया गया है, तो इसकी महिमा वो अधिकार के कारण से है, इतना ऊंचा अधिकार प्राप्त हो गया है, वह लोगों को बहुत उन्नति कर सकते हैं। बड़े दुख की बात है कि हम थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए लालायित रहते हैं और दुखी रहते हैं, जलते रहते हैं, कष्ट उठाते रहते हैं, मूर्खता के कारण से, इस तरफ खोज न करने के कारण से। आदमी अगर खोज करे तो सत्संग मिल सकता है, कहने में थोड़ा संकोच होता है, मैं जो बालक था पढ़ता था तो थोड़ा पढ़ने लगा तो रामायण पढ़ने लगा तो रामायण पढ़ते हुए मन में आया कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अगर आगे होते तो उसने हम रामायण सुनते, उनकी कथा सुनते, परंतु पहले चले गए, ऐसी रेखा आती थी, बचपन था, कोई विशेष समझ नहीं थी, परंतु वो अपने हाथ की बात नहीं, परंतु हाथ की बात नहीं, उसमें हम लग गए तो लगने से हमारे को मिल गए, हमारे को संत मिले हैं, महात्मा मिले हैं, तो ये मिल सकते हैं, एक जगह अटके नहीं, अगर खोज करे, विचार करता जाए और उन्नत होता जाए तो उनको सामग्री मिलती है, ये मैंने देखा है। आप लोग भी देख सकते हो कि आपको अच्छा संग मिल सकता है, अच्छी आपको योग्यता मिल सकती है, आपकी उन्नति का बिल्कुल मार्ग मिल सकता है, पर आपकी खोज हो, इसमें अन्वेषण किया जाए, ढूंढा जाए, इसको खोजा जाए, तो बड़ी भारी उन्नति आप कर सकते हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान को प्राप्त नहीं, भगवान को वश में कर सकते हैं, वश में होते आए भगवान, भगत के वश में होते आए, अनंत ब्रह्मांड जिसकी पूर्णा मात्र से उत्पन्न होते हैं, पालित होते हैं और लीन हो जाते हैं, ऐसे सर्व समर्थ, उनसे बढ़कर कोई सामर्थ्य किसी की हुई नहीं है, नहीं होगी नहीं, और उससे समर्थ कोई हो सकता नहीं, सामर्थ्य की आखिरी सीमा है, ऐसे परमात्मा भक्त के वश में हो जाते हैं, भक्त का काम करने के लिए लालायित हो जाते हैं, वो इतनी योग्यता मनुष्य प्राप्त कर सकता है, कितना अधिकार है बताइए, कितने हम ऊंचे बढ़ सकते हैं, ऐसा अवकाश भगवान ने हमारे को ऐसा मौका दिया है, उस मौके को प्राप्त होकर के हम अटक जाए वहां है, बड़े दुख की बात है। तो सज्जनों, आप हम बहुत ऊंचे बढ़ सकते हैं, परमात्मा तो प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं, भगवान के इष्ट हो सकते हैं, अर्जुन को भगवान इष्ट कहते हैं, इष्टोसी मेति तत्वोपक्षा मिति, तुम मेरा इष्ट देव है, कितनी विलक्षण बात है, अर्जुन का हुक्म पालन करते हैं, सेना और मध्य स्थापित अच्छा, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा खड़ा करो, वहां हुक्म देते हैं अर्जुन, और भगवान पालन करते हैं, सेना और मध्य स्थापित तुम भीष्म द्रोण प्रमुख सर्वेशा समान उवास पार्थ पशेरा समेत, तुमने कहा अब देखो ये देखो दोनों देख लो, ऐसे अर्जुन ने कहा वैसे आज्ञा पालन कर रथ खड़ा कर कहा, तुम दोनों से देख लो, देखो ले लो मैं वही रथ ले आया हूँ, तब देख लो, जिनकी पूर्णा से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, लीन होते हैं, वो ब्रह्मांड रसयिता परमात्मा भगत के वश में हो जाते हैं, जूठन उठाते हैं, काम करते हैं, पांव दबाते हैं, हजामत करते हैं, छोटे से छोटा काम करने को तैयार रहते हैं, नौकरी करने को तैयार। एक नाथ जी महाराज हुए दक्षिण में, बड़े भगवान के भक्त थे वो, बड़े विलक्षण संत हुए, बहुत विचित्र संत हुए। गुरु आज्ञा पालन करने में मैंने जितने संतों के जीवन चरित्र देखे हैं, जीवन चरित्र पढ़ने की मेरे शौक रही अब भी है, तो वो मैं पढ़ता हूँ, तो इतना गुरु भक्त हमारे को हरेक नहीं था। ऐसी गुरु भक्ति थी एक नाथ जी महाराज की, बहुत विचित्र गुरु भक्ति। गुरु के कहने बस दो गुरु ने इशारा कर दिया, मुख ऐसे ऐसे विलक्षण विलक्षण काम एक नाथ जी महाराज ने कर दिए। ये पढ़ते थे बच्चे पैदा हुए ना, तो नक्षत्र में पैदा हुए, खराब नक्षत्र में, तो माँ बाप मर गए, माँ मर गई, बाप मर गए, बूढ़ी दादी माँ रही, बूढ़ी दादी माँ के पास एक पोता रहा और कोई कुटुंब में रहा नहीं, छोटा बालक रहा। वो दादी माँ जो पिता की माँ है वो माँ पालन करती है। चार पांच वर्ष के हो गए तो वहाँ जो हमारे कुल गुरु थे, ये भी ब्राह्मण थे, पर ब्राह्मणों के भी कुल गुरु होते हैं ब्राह्मण, उनको कहते थे, वो आया करते, वो पढ़ाया करते थे, तो वर्णमाला पढ़ाई और सब पढ़ाया, उसमें बड़ी बुद्धि तेज थी, पूछते थे गणित, उनमें भी ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे जो है वो खुश हो जाते, पढ़ाने वाले प्रसन्न होता है, कैसा बच्चा है, कैसी बात पूछता है। पांच वर्ष के हो गए तो सुना के ध्रुव जी महाराज पांच वर्ष के थे और भगवान से मिल लिए, तो उनके मन में पांच वर्ष में हुई तो भगवान से मिलूंगा मैं। अब ध्यान दीजिए, छोटा बच्चा है पांच वर्ष का है कि ध्रुव जी को भगवान मिल गए तो मेरे को क्यों नहीं मिल सकेंगे, मैं भगवान से मिलूंगा। रात्रि को उठ करके अकेले चल दिए जंगल में, खोज करे पर पता नहीं लगा दादी माँ बेचारी बूढ़ी माँ, अब उसी गोद में एक छोटा सा बालक, अगर वो बालक में चला जाए, बेटा बहू सब मर गए, उस दशा की क्या दशा हो, रोती रही बेचारी, अंधी हो गई, मेरा एका मेरा एका मेरा एका करती रही। शुभ कैसे साथी वो निकले, वहां से निकल करके गए तो पैठन से देवगढ़ पहुंच गए। देवगढ़ वहां पर मुसलमानों का राज्य था, उनके मंत्री थे जनार्दन पंत, ब्राह्मण देवता, बड़े अच्छे पंडित, बड़े भगत भगवान के, दत्तात्रेय जी महाराज के साक्षात दर्शन होते थे उनको, दत्तात्रेय जी का इष्ट था और दर्शन होते थे, ऐसे थे महाराज। वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए, उनके पास रहते रहे। छोटा बच्चा आया है तो प्यार आता ही है, स्नेह है, बच्चा है, भोजन करा दो, कपड़ा दे दो, पालन करो, उनके पास रहने लगे। तो थोड़ा बहुत वो सीख गए, हिसाब सीख गए, वो हिसाब सीख गए तो जनार्दन पंत महाराज ने कुछ हिसाब दिया, कहले बेटा इनका जोड़ लगा देना, थोड़ा सा हिसाब कर देना ही, तो उसमें लग गए। तो छोटी अवस्था में ऐसे लगे कि भोजन करके रात्रि को बैठे थे, प्यास लगी, प्यास लगी तो जल पी लूंगा तो आलस आ जाएगा, नींद आ जाएगी, आलस में काम होगा नहीं, जल नहीं पिया। बालक में देखो बुद्धि कितनी विलक्षण, बालक की बुद्धि है, प्यास लगी हुई पानी नहीं पिया, पानी पीने से आलस हो जाए, काम नहीं कर सकोगा, तो बैठे काम कर रहे थे। तो ये फूल वो जोड़ ठीक मिलती नहीं है, ठीक तरह से बड़े चिंतित हुए, विशेष बोध तो था नहीं गणना का, पर जितने लगे उसे बोध हुए नहीं ठीक तरह से। तो रात ही 11-12 बज गए, तब तक वो बैठे दीप के पास में और वो ध्यान दे हिसाब कर रहे हैं। रात्रि में जनार्दन पंत लघु शंकर ने कहने के लिए उठे, उठ दिया था, एक नाथ बैठा है वो देख रहा है, तुम सो मानो शुद्ध होकर प्रसाद में हाथ पैर धो करके और आए, वो पास में खड़े रह गए। जो मनुष्य दीपक के पास में बैठा रहता है उसको अंधेरे में दिखता नहीं आदमी, बाहर अंधेरा रहता है, अरे वे बहुत नजीक आ गए और उनकी धुन लगी थी उसे हिसाब करने में, तो रुदी खा नहीं, वे आकर प्यास में खड़े रह गए। तो क्या करता है बच्चा? तो
पशु भेजने वाला है कौन? मैं राजगद्दी बैठाऊंगा, अब वो कौन भेजता है? राजा तो कैद कर दूंगा मैं, और भरत को भी मैं जो आ जाएगा अपने निहाल से उसको मैं जीत दूंगा, और भरत का मामा युद्ध जीत आ जाए तो उसको भी मैं परास्त कर दूंगा। हम जो शस्त्र धारण करते हैं ये श्रृंगार के लिए थोड़ी है। ऐसे तेज हो गए भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण, राज्य सच्चा हो तो उसके लिए विचार किया जाए। ये भेद नष्ट होने वाला भाई, अपना संबंध रहने वाला नहीं है। फिर पिता ने कह दिया, उसमें महाराज भगवान ने इतनी विलक्षण बात कही है, पिता की आज्ञा से मैं अग्नि में प्रवेश हो सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ,
सब हो गया हमारा। ऐसी खुशी है, प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्नता देकर गुरु जी कहे, क्या एका क्या मिल गया? वो खड़े हो गए हाथ जोड़ के, महाराज आप यही थे? हाँ बोलो, क्या मिल गया? कि महाराज एक भूल निकल गई, भूलते ये गुरु कृपा होती है। जनार्दन पंत्र क्या बेटा, एक पाई की भूल निकलने से इतना आनंद, अनादिकाल की भूल निकल जाए तो कितना आनंद हो। ये कृपा न जाने किस समय में उनके मन में क्या पैदा हो जाए, गुरु के मन में ऐसी पैदा हुई कि वो भूल निकल जाए तो तुम्हारा संतों की जो फुरना है वो कोई मामूली नहीं होती है, बड़ी कृपा होती है। तो आपकी कृपा है। तो कुछ बड़े हो गए थे तो छोटे नहीं रहते, कई बार समस्या थे ना, पढ़ाई भी कर ली थी। तो महाराज ने देखा कि लड़का बहुत तत्परता से काम करने वाला है, तो उनके मन बदल गया। महाराज का पहले भी मन था, वो विशेष हो गया। तो वे जहाँ समाधि लगाते थे सुबह, अपना नित्य कर्म करते थे, बड़ा मकान था बढ़िया, वो राज के बड़े मंत्री थे, सब राज्य में जो करते सो होता था, सब था तो मुसलमानों का राज्य, पंत मुख्य थे वहां, जो करते से होता था। तो बैठ रहे थे वहां, कहता भाई बाहर कोई नहीं आए तो बाहर पहरा लगाते, कुत्ता है कोई हल्ला गुल्ला न करे, महाराज के भजन में विघ्न न हो, इस रक्षा करते थे। तो वो जो गात ऐसी बीती, भजन देखा तो बाहर घूमते थे। उस दिन कहे का बेटा आ जाओ, भीतर से रह गए, भीतर अपने भगवान जहाँ समाधि लगाते वहां से यहाँ बैठ जाओ। वो अपने भीतर भजन ध्यान करते थे, वो ध्यान करते दत्तात्रेय प्रकट हो गए। आपने देखा दत्तात्रेय जी साथ में कुतिया रहती है, कुत्ता भी मूर्ति है जो रहती हो। तो महाराज प्रकट हो गए एक कुतिया साथ में, और महाराज दत्तात्रेय प्रकट हो गए। दत्तात्रेय जी ने पूछा कि कौन है? महाराज आपके चरणों का दास है, एक मालक है, भजन करता है। ठीक है, तो दत्तात्रेय जी महाराज की कृपा हो गई, एकनाथ जी गुरु कृपा हो गए, महात्म भगवान की भी कृपा हो गई। तो उसको बुलाया पास में, बुला कर कहा ये कुतिया है, इसको दो वैसा दूध लाओ। तो लेकर गए तो कामधेनु साक्षात, वो देखती कुतिया थी, कामधेनु का दूध एक पात्र में लेकर आए, दूध दूध दिया, दो करके महाराज अर्पण कर दिया। दत्तात्रेय जी ने लिया, गुरु महाराज ने लिया और कहा बेटा ये तुम ले लो, कोरण पिया। पीते ही महाराज उनको वो तो काम धेनु दिखे, और सब संसार परमात्मा मैं एक सच्चिदानंद घन परमात्मा है, परमात्मा वासुदेव स्वरूप ज्ञान हो गया, सब देखने लगे। अब तुम जाओ इस पहाड़ पर भजन करो, भगवान के दर्शन न हो तो तुम मत आना। कृष्ण भगवान का मंत्र दे दिया और वहां पर जप करने लग गए। तो उस पहाड़ पर ही रहे, एक गाय आती थी वो आकर खड़ी रहती, वो दूध दे देती, वो दूध पी लेते, बस और कुछ खाना पीना नहीं। जब भजन करते रहे, भगवान के साक्षात दर्शन हुए, तब आए गुरु महाराज के पास में कि महाराज ऐसे कृष्ण भगवान ने मेरे को दर्शन दे दिए। कहा अच्छा अब तुम जाओ परिक्रमा करो, इन्हें गाँव में जाते हो पृथ्वी प्रदक्षिणा, अपने देश महाराष्ट्र की परिक्रमा करके आओ। आज्ञा दे दी, चले गए। 20-25 वर्ष के हो गए जवान, वो परिदक्षिण प्रदक्षिण में गए। वे गुरु महाराज जो थे पढ़ाते थे, वे खोजते थे कि एका कहाँ गया, कहाँ मिले। तो वे वहां पहुंचे जनार्दन पंत के पास में कि महाराज एका आया था यार, कहाँ? एक नाथ तो है, अभी तीर्थ यात्रा हो गया है, मैंने कह दिया है कि परीक्षा में जाओ कि महाराज बूढ़ी माँ दादी है वो अंधी हो गई है, बहुत वृद्धा है और नेत्रों से दिखता नहीं है, इतनी बूढ़ी हो गई है और एका कर रही है, मेरा एका कहा गया। कहते इतने वर्ष रहा, 5 वर्ष 25 वर्ष का होगा जवान, बात ही नहीं की मेरे पास बूढ़ी दादी है, मेरी क्या अवस्था है, कैसा हूँ, कहा ही नहीं। तो महाराज बात तो ये है, मैं खोजता हुआ आया हूँ तो पत्र लिख दिया और पत्र लिख करके अब तुम वहीं रहना, ऐसा महाराज ने आदेश दे दिया। वो पत्र लेकर गांव पहुंचे और कहा कि वो पैठण आएगा, पैठण गांव होगा वहां आएगा वो, तो घूमते पैठण आए तो बाहर ही ठहरे गांव में भिक्षा के लिए, ब्रह्मचारी को भिक्षा कर दिया, भिक्षा के लिए गांव में गए, भिक्षा लेकर आए तो वो देखा तो गुरुजी पहचान नहीं सके, अब छोटे बच्चा थे 25 वर्ष जो हो गए, पंत विचार किया वो आए गए ब्रह्मचारी रूप में है, फिर पता लगा कि यही है। तो वो गांव से निकल करके बाहर जा रहे थे तो वो आ रहे थे, ये ब्राह्मण देवता बाहर गए, वहां उनको पत्र दिया कि महाराज ये पत्र है, आपका नाम मेरे नाम एकनाथ है, ये गुरु जी का पत्र देखते ही खुश हो गए कि महाराज का पत्र मिल गया। अपने पास कम्बल था उस पर पत्र रखा और परिक्रमा की, परिक्रमा करके दंडवत की नमस्कार किया, फिर पत्र को खोल करके पढ़ा, उसमें लिखा था कि बेटा वहीं रहना, वहीं बैठ के, घर पर नहीं गए, घर थोड़ी दूर था पहले घर, पर वहीं रहना कह दिया ना, जहां पत्र मिला वहीं बैठ के वहीं रहे, फिर गुरु को से मिलने के वही नहीं गए, वही महाराज ने आज्ञा दे दी। बहुत विचित्र गुरु भक्ति होगी, ये एकादश स्कंद पर एक नाथी भागवत है, हिंदी में भी वो छप गई है, उसमें उन्होंने टीका लिखी है, क्या सुंदर टीका है उसमें, कितने विलक्षण बताओ, एक नाथी भागवत कहते हैं उसको, ऐसे भावार्थ रामायण है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र मराठी भाषा में है, इसका अनुवाद भी हुआ है हिंदी में, वो पुस्तक मैंने देखी है, बहुत विचित्र भाव, भागवत के भाव इतने सुंदर खोले में, इतना बड़ा है, 31 अध्याय है, 11 स्कंद के, ऐसी सुंदर उसमें व्याख्या की है। तो भावार्थ रामायण एक नाथी भागवत ये बढ़ाया है और भजन करते रात दिन बड़े विचित्र संत हुए हैं, ऐसी आज्ञा पालन करते थे, कई कई परिचय हुआ वहां जब रहते थे जनार्दन पंत के पास, तो उस राज्य पर दूसरे राज्य ने चढ़ाई कर दी, अब चढ़ाई कर दी, गुरु महाराज बैठे समाधि में भजन स्मरण में बैठे थे, उस चढ़ाई सुनी तो भाई महाराज का घोड़ा था गुरु जी का, एक नाथ पंत का जनार्दन पंत का घोड़ा, उस पर सवार होकर के और लड़ने गया, हमारे अकेले ने विजय कर दी, युद्धगढ़ में इतने कुशल थे, विजय कर ली, भगवान की सहायता थी, भगवान का साक्षात्कार था तो भगवान की शक्ति से विजय हो गई, वो घोड़ा लाकर बांध दिया, पीछे गुरु जी समाधि से उठे तो घोड़े के पसीना आया हुआ, ये क्या बात है, क्या हुआ, क्या मेरा पोशाक गुरु जी की पहन ली, जनार्दन पंत की पोशाक पहन ली, वो गई सब विजय कर ली, कई कई ऐसे चमत्कार किए उन्होंने। फिर वहां रहने लगे तो भगवान में रात दिन भगवान के भजन में लगे हुए है, मस्त तत्व की थे, जीवन मुक्त महापुरुष हो गए, भजन में लगे रहते थे, तो इतने तल्लीन थे महाराज, इसमें विचित्र विचित्र उनकी घटना है, एक नाथ जीवन चरित्र गीता प्रेस में छपा हुआ था, अब फिर छपा है तो मिलता है, बड़े सुंदर चरित्र उसे, तो ये राज वहां पर तो सेवा करते थे, भगवान का पूजन करते थे, आरती करते थे, तो उनके चंदन घिस लेना, माला बला देना, पुष्प लाना आदि सामग्री सब ये स्वयं जुटाकर करते थे। तो वहां एक दिन बालक आया एक कि महाराज मैं नौकरी करना चाहता हूँ, क्या लोगे, कुछ नहीं, तुम्हारे माँ बाप हम कोई नहीं है ना, माँ है बाप कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, क्या लोगे, कि भोजन तो हमारे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए अचार्य जाओ, तुम्हारा नाम क्या है, हमारा नाम श्रीखंडिया है, श्रीखंडिया नाम, बैठ गया थी। वो भगवान की सेवा पूजा करते थे, चंदन चढ़ाते थे, पुष्प चढ़ाते थे, माला पहनाते थे, उसमें इतने मस्त हो जाते भगवान की पूजा में। तो पूजा में मस्त होकर भगवान ललायत हुए कि मैं पूजा किसी करूं, हम अकेले मौत ले रहा है तो शिखंडिया बनकर के आए, मैं भगत की पूजा करूंगा, भगत की सेवा करूंगा। भगवान की सेवा करता है भगत और भगत की सेवा करते है भगवान। तो शिखंडिया बनकर आए, अब सब का सामग्री जुटा देते हैं महाराज, सब सेवा की जितनी है चंदन कर देते हैं, पुष्प ले आते हैं, माला गूंथ देते हैं और संध्या के लिए पात्र लगा देते हैं, आसन लगा देते हैं, पंच पात्र ला देते हैं, आसवनी ला देते हैं, पवित्र ला देते हैं, सब कुछ जो करना चाहिए सब करते थे, सेवा करते थे। अब महाराज अपनी सेवा पूजा कर ले, ब्याह हो गया था महाराज का। उस समय गिरजाबाई नाम की स्त्री थी, उसकी लड़का हो गया भाई पंडित, लड़का हुआ, उस लड़के को खिलाते थे और माता जी जब रसोई बनाती सब सामग्री लाट तैयार करती थी, चूल्हा चेता देना है, आटा स्नान करके रख देना है, साग रामिया करके साग रख देना है, इतनी चतुराई से काम कर दे उनको केवल रसोई बनानी पड़ती, सब सामग्री जुटा देता, श्रीखंडिया सब काम करते। एक उद्धव नाम मंत्र थे वो काम करते थे, तो सब काम करते वो। अरे बस भगवान उसकी सेवा, भगवान मस्त हो जाते, भगवान का मन लालायत तो हो गया कि ये मेरी सेवा में इतना मस्त रहता है तो मैं सेवा किसकी करूं, अब इनकी सेवा करूं, मैं भी ये आनंद ले लूं, सेवा करने का आनंद ले लूं, भगवान का मन चला गया। वर्षा बह रहे और सेवा करते थे, हरि पंडित को खिलाते थे, विचित्र बात थी उनकी। तो एक ब्राह्मण, एक दो घटना सुनाता हूं आप, वो उनके जीव जयंती मिलेगी, बड़ी सुंदर घटना है। एक ब्राह्मण देवता किसी गांव में रहने वाले थे, उनके कन्या बड़ी हो गई, तो कन्या का संबंध करना, घर में पैसे थे नहीं, तो वहां से वो पैठण आए, पैठण महाराज रहते थे, आज भी वहां पर होता है महाराज, कावड़ ला करके भरते थे। अभी मेला भरना षष्ठी हो गई, प्याग फागन की षष्ठी, उस दिन मेला भरते हैं, सब लाग उसने हौद है बड़ा, हमने देखा गया वो, उस हौद में पानी लाते, वो कावड़ लाते थे नदी से, वो भरते थे, तो उतना मेला होता सब लोटा डालते हैं उसमें, पर जो शिखंडिया की कावड़ आती है ऊपर से पानी बहने लगता है, अब उस भेजो पता नहीं लगता कौन आया, परंतु पानी डालते बाहर से पानी बहने लग, गंगा जी भेजो बहने लगते है, तो शिखंडिया आ गया, वो बहता था पानी। ऐसे मिले भक्त हुए, क्या बताओ, तो उसके जरूरत थी पैसों की, तो आते आते देर लगती, रात्रि में कई लोग बैठे थे, अग्नि ताप रहे थे, वहां पहुंचा, कहा गया हम गांव से आया हूँ, क्यों आए हो, कि मेरी कन्या है उसका मेरे को दान करना है, बड़ी होगी मेरी पुत्री, अब कन्या दान करना है, खर्चा मेरे पास में नहीं है, कितने रुपए चाहिए, कि 100 रुपये, उस समय 100 रुपये बहुत कीमती थे, 100 रुपये, 100 रुपये मेरे काम हो जाएगा सब। तो उन लोगों ने कहा कि देखो 100 रुपये तो हम दे देंगे, एक काम तेरे को करना होगा, कि क्या, एक नाथ को गुस्सा हटा दे, वो क्रोध कर दे तो रुपये 100 जाएंगे तुम्हारे को, मुझे क्रोध आए क्या बड़ी बात है। एक नाथ जी महाराज बैठे अपना भजन करते थे नित्य कर्म, वो आया बाहर से जूता सहित जाकर के गोदी में बैठ गया। अच्छा अच्छा आप बड़ी कृपा करी महाराज, आपने पहले कहा नहीं मैं आया नहीं, सामने बड़ी कृपा करी, मेरा तो बड़ा आदर सत्कार किया, मेरा दाव तो खाली गया, क्रोध आए ही नहीं, आप धागे बड़ी कृपा की, अब शोच स्नान करो। उद्धव को बुलाया, उद्धव आओ भाई ये ब्राह्मण देवता आया है, ठीक करो। तो वो कहते महाराज क्या करोगे, स्नान करो, नित्यनेम करो, नित्यनेम कर तैयार हुए, अब चलो भोजन के आए, गिरजा भाई ने रसोई तैयार कर दी, अब रसोई करे आओ, तो चलो ब्राह्मण देवता भोजन करो, तो साथ साथ चले गए, बैठा दिए यो, तो गिरजा भाई खुद परोसती थी अन्न, परोसा अन्न, परोस करके घी परोसने लगी, वो जहाँ उस ब्राह्मण के सामने आई वो कूद कर ऊपर चढ़ गया, गिरजा भाई ऐसे हो गया 30% बैठा हो। तो एक दादी महाराज कहते ख्याल रखना, देखो ब्राह्मण गिर न जाए, इस ब्राह्मण के चोट नहीं जाएगी, गिर नहीं जाएगा कहीं पर। तो वो कहती हरि पंडित को लादे लादे काम करने का मेरा स्वभाव है, मैं ये बच्चा भी है मेरा बैठा चलना मैं गिर गिर रोने लगी महाराज, मेरे 100 रुपये गए मेरे 100 रुपये कैसे गए, तुम्हारे 100 रुपये कैसे गए। क्या महाराज कहा कि इसको क्यों धना दे तो हम बेटा 100 देंगे आप गुरु है। अरे बात पहले कहना चाहते मैं मेरे क्रोध आने रुपये 100 में तुम्हें क्रोध कर देता, तुमने कहा ही नहीं पहले मेरे को क्या पता। ऐसे सत्व अब स्त्री के ऊपर एक कूद कर मनुष्य बैठ गया है यार, पति देखे बस रहे वो उसने देखा भाई ये क्रोध आता है इतने पर भी क्रोध नहीं आता। ऐसे बड़े महात्मा हुए, गुरु भक्त हुए, भगवान वहां काम करते थे सभी, ऐसे कई कई चमत्कार हुए। एक बार श्राद्ध किया पिताजी का, दादा का श्राद्ध किया, श्राद्ध में हलवा बना रहे थे तो बहुत से चमार उधर हो जा रहे थे, तो वो जब आटा सेकते हैं ना सुगंधी आती है, तो उनको सुगंधी आई, महाराज वहां बैठे नित्य काम कर रहे थे, सुगंधी आया चमार, उन्होंने कहा भाई सुगंध कैसी है धानो कैसा मीठा बनेगा। तो एक नाथ जी मारे हरी मन में उनको आदमी भेजा, लाओ चमार अपने परिवार के बिताओ सब चमार सबको भोजन कराएंगे। वो श्राद्ध का आज महाराज तुम्हारा वो भोजन करा दिए, ब्राह्मण ईर्ष्या करते थे इनका इतना मान क्यों होता है, सब ब्राह्मणों के तुम्हारे घर बाप भोजन नहीं करेंगे। श्राद्ध के विषय में श्राद्ध का आनंद निशी जाति को देना नहीं चाहिए, जिसमें सब श्राद्ध तुमने बजाज भोजन बना दिया उनको दे दिया, अब उनको दूसरा आश्रम बनाए महाराज पधारो भोजन को, नहीं हम नहीं आएंगे। इतना जी देखा इनके मन में सुगंधी आ गई, ब्राह्मणों से कहा महाराज देखो ये पितरों के लिए अन्न होता है वो जूठन नहीं होना चाहिए, समारोह को सुगंधी आ गई वे राजी हो गए, जूठन हो गया इस वास्ते ये पितरों के काम का नहीं था, मैंने इनको भोजन करा दिया, अब दूसरा भोजन बनता है आप पधारोगे, नहीं हम नहीं आएंगे, नाराज हो गए एक दखल ही नहीं आएंगे। तो महाराज शिखंडिया ने कहा क्या बात है, शिखंडिया भी ऐसी बात आते है कि कोई चिंता मैं करूँ, उसने पड़ा बाप और दादा पर दादा पीढ़ियों तक का आह्वान किया श्रीखंडी ने, सब आगे पंक्ति लग गई, सबको प्रत्यक्ष भोजन करा दिया, पितरों के नाम से ब्राह्मणों को कराते ऐसी विचित्र बात थी। क्या कहो विचित्र, एक ब्राह्मण द्वारिका में जाकर भगवान का जप करने लगा, कृष्ण भगवान के मंत्र का जप करता है दर्शन करने के लिए, दर्शन दे दो महाराज दे दो दर्शन हो जाए। उसका स्वप्न हुआ कि तू यहाँ क्या करते, मैं आजकल यहाँ नहीं हूँ, मैं तो पैठण में वहाँ एकनाथ जी की नौकरी में हूँ, वहाँ तुम जाओ दर्शन करना हो तो, मेरा नाम श्रीखंडिया है, श्रीखंडिया नाम से नौकरी करता हूँ वहाँ। तो वो बेचारा आया हुआ से नदी में स्नान किया, स्नान करके पास गए तो पूछे तो महाराज नित्य कर्म करके उठ रहे थे, जाकर चरणों में गिर गया, क्या चाहते हो ब्राह्मण देव, मैं ब्राह्मण हूँ द्वारिका से आया हूँ आपके चरणों पर, तो मेरे को भगवान के दर्शन करा दीजिए। कहते क्या दर्शन करा दे, दर्शन कराना किसी हाथ की बात है, भगवान के दर्शन करा दो मैं, तो महाराज आप कृपा करो पकड़ लिए चरण से दर्शन करा दो मेरे को, दर्शन करा दो। वो कभी मेरे हाथ की बात नहीं है, दर्शन करा दो भगवान के दर्शन, भगवान कृपा का देश होते हैं। जाने का दो सुनो, तुम जो मैं करते हो ना, मैं हूँ ये जो मैं हूँ आप कहते हो, ये हूँ जिससे भाग होता है, सब अहंकार जिससे प्रकाशित होते हैं वो परमात्मा है। कहते मैं ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ज्ञान आप अपने पास रखो, मेरे तो भगवान कृष्ण के दर्शन गया साक्षात सगुण रस साकार के, कि मेरे भाई ये मेरी ताकत नहीं, मेरी बात तो मानते नहीं हो तुम, कि मानू कैसे मेरे को दर्शन करना है। श्रीखंड कहाँ है, श्रीखंड हाँ पूछा श्रीखंडिया देखो तो श्रीखंडिया मिलता ही नहीं, श्रीखंडिया कैसे पूछते हो, कि मैं भगवान कृष्ण है श्रीखंडिया मेरे को ऐसा आदेश हुआ कि तुम जाओ वहां मिलेंगे, तो वो कहाँ है, अब ये श्रीखंडिया मिलता ही नहीं। फिर पूछा बात क्या है, कि महाराज मैं वहां वर्षों तक पैर तप किया है जप किया है और मेरे को आदेश हुआ कि मैं द्वारिका में नहीं हूँ, आजकल पैठण में श्रीखंडिया के नाम से एक नाथ जी की सेवा कर रहा हूँ, वहाँ जाओ इस बात में आया वो मिला दो आप। श्रीखंडिया यही होगा, फिर महाराज प्रार्थना करी, हे नाथ नजर मैंने क्या कि आपने सेवा ली है, मेरे बच्चों को खर्चे रखते थे, मिर्जा भाई की गाड़ी काम करते थे, वो कभी काम नहीं हो तो धमका देती थी, या वो सब सहते थे, काम करते थे आप, ऐसा ऐसा मेरे लिए काम के रोने लग गए, भगवान प्रकट हो गए, क्या चाहते हो महाराज, इस ब्राह्मण को दर्शन दो, ऐसे विलक्षण संत हुए। इन्होंने गुरु भक्ति बहुत विचित्र होती है, बड़े अच्छे महापुरुष तत्व के जीवन मुक्त महात्मा हुए हैं। तो आदमी कितनी उन्नति कर सकता है, 5 वर्ष का बालक घर से निकल जाए, माँ बाप है नहीं, बूढ़ी दादी माँ बेचारी गोद में खिला कर बड़ा किया, अब वो रो रही है, फिर माँ वहीं आ गई, वहीं घर बना, वो घर पर नहीं गए, अपने घर पर नहीं गए, वहीं घर बना, वहीं रहने लगे, बस गए नहीं गए, फिर पता लगा कि गुरु जी महाराज का शरीर शांत हो गया है, मिलने को नहीं गए, पैसे वहीं रहना, तो फिर कहा कि मरे गुरु रोवे चेला, दोनों को क्या ज्ञान मिला, गुरु मरते नहीं और चेला रोता नहीं, गुरु तो साक्षात सच्चिदानंद घन भगवान सदा हमारे साथ में, वो मरते नहीं कभी और मैं रोता नहीं कभी, ऐसे संत हुए। तो मनुष्य कितना ऊंचा हो सकता है, भगवान नौकरी करने के लिए लालायत हो जाए, उनका मन चले कि मैं नौकरी करूं, इनकी सेवा करूं, कितना ऊंचा पद है, अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान भी जिसका काम करने के लिए लालायत हो जाए, इतनी उन्नति मनुष्य कर सकता है, कितनी विचित्र बात है। वो मनुष्य शरीर आपको और हमारे को मिला है, तो मनुष्य शरीर की महिमा किस बात में है, सदुपयोग में है, इसका सदुपयोग किया जाए, भगवान के लिए किया जाए, गिरिनाथ जी महाराज को दर्शन नहीं नौकरी करते थे भगवान, और भगवान ने वहां कहा है कि मेरे को आनंद बहुत आता है, जैसे माता के बच्चा होता है वो बालक उस पुत्र को पालन करने में माँ को आनंद आता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, बच्चा दूध पी लेता है, खा लेता है, माँ खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, ऐसे एक नाथ तुम्हारी सेवा करके मेरे को आनंद आता है, मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ, मेरे तो सफल हो जाता है मेरा जीवन, ऐसे भगवान कहते हैं। इतनी उन्नति मनुष्य कर सकता है अगर सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, तो कितना उन्नति कर सकता है, वो उन्नति आपको और हमारे हाथ की बात है, सज्जनों सदुपयोग करने की बात है, अपने जीवन का सदुपयोग किया जाए, अच्छा संग लिया जाए, गीता रामायण पढ़ा जाए, उसके अनुसार अपना जीवन बना जाए, सुन लिया समझ लिया, अब जीवन हमारा ऐसा पवित्र बनेगा ही, ऐसे उत्साह से किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, परमात्मा की कृपा मानव की कृपा के भरोसे किया जाए तो मस्त हो सकता है आदमी, हजारों का लाखों का कल्याण कर सकता है, ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है भगवान से, वो शक्ति आप में हमारे में समय प्रकट हो सकती है, भगवान ने इतना अधिकार दिया है और फिर हमारे सुख के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए हम लालायत हो गए, धन कमाने की झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करें, धन कमाया तो यही रह जाएगा, ध्यान दे जाए थोड़ा, और जिसके झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते हैं वो पाप साथ चलेगा, धन में से कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं और पाप का कौड़ी एक पाई भर में पीछे रहेगा नहीं, सबका सब जाएगा साथ में, और उसमें फिर चतुराई कहलाती है, आप बुद्धिमान कहलाते हो कि हमने बुद्धिमानी से धन पैदा कर लिया, धन तो यहाँ रहने वाला पैदा कर, साथ लेने की चीज क्या ली है, झूठ कब ली है, ठगी है, धोखेबाजी है, विश्वासघात है, ऐसे महान महान पाप तुमने लिए साथ में, कितने तुमने अपना पतन कर लिया, इसमें भी चतुराई और होशियारी समझदारी मानते हैं, सज्जनों बुद्धि मारी गई, इस बात भाइयों बहनों प्रार्थना करता हूँ आप अब चेत करो, अब इतना करो कि पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, आप जिसको अन्याय समझते हैं, आप जिसको पाप समझते हैं, आप जिसको खराब समझते हैं, वो काम मत करो, शास्त्रों का ज्ञान हो मत हो आपको, आपको विचार का पता नहीं, बोध नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान ना हो, जिसको आप पाप समझते हो वो हम नहीं करेंगे, जैसे झूठ बोलना पाप है तो अब झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा देना पाप है, अब किसी को धोखा नहीं देंगे, अब किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी का घात किसी का विश्वासघात नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं चुराएंगे, ऐसा विचार एक माता बहन और भाई लोग आज विचार कर लेंगे, जो जो आपको अवगुण देखते हैं उन अवगुण का त्याग करना शुरू कर दे, अपने जीवन में जो अपनी गलतियां देखे आपके समझ में आ जाए वो जाने हुए असत्य का त्याग करते रहो। आपको तत्व की प्राप्ति तक आपको स्वतः ज्ञान हो जाएगा, ऐसी भगवान की कृपा है। मगर शरीर के ऊपर एक संत मिले थे, वो कहते न जाने भगवान का मनुष्यों के साथ कितना पक्षपात है, कितनी छूट दे रखी है मनुष्यों को, कितना अधिकार दे रखा है भगवान ने, पक्षपात किया है। तो मनुष्य ऊपर भगवान की कृपा है। ये बहनों माताएं अगर ठीक हृदय से जिसको दोष समझे, जिसको पाप समझे, वो नहीं करेंगे, अब वो पाप कभी नहीं करेंगे, और सच्चे से दिल है भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, तब तो ज्ञान हो जाए, जीवनोमुक्ति की प्राप्ति हो जाए। ऐसी प्राप्ति का अभी मौका है सज्जनों, भगवान के चरणों के शरण होकर लग जाओ रात दिन, उसमें पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, दुख आ जाए कितना ही दुख सह लेंगे, भोजन नहीं मिलेगा तो अन्न न मिले न सही, पर पाप नहीं करेंगे, ऐसा विचार हो जाए तो आप भूखा कर मरोगे नहीं, भूखा कर मर गए मर जाओ, ऐसी बात कभी नौबत आएगी ही नहीं। पर मन में विचार इतना है कि मर जाए तो भी पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, झूठ कपट नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, धोखेबाजी नहीं करेंगे, ऐसा विचार पक्का करके भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, उनको पुकारो तो आपकी उन्नति हो सकती है। बड़े बड़े चोर डाकू हत्यारे मनुष्यों को मारने वाले, वे भी उस परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा सुंदर अधिकार मिला हुआ है। तो आप लोगों के प्रेम में आज मन में आई वो क्या कहूँ, मेरे मन में कुछ आती नहीं रही, पर आएगी आप कितनी उन्नति कर सकते हैं, कितने ऊंचे बढ़ सकते हैं। आप समझेगा नहीं, मैं जानता नहीं, परंतु वास्तव में बड़े भाई उन्नत हो सकते हैं, किससे, एक परमात्मा के शरण होने से, प्रभु के चरणों के शरण होकर के। बिगड़ी जन्म अनेक की, ध्यान में, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। कुसंग का त्याग करके तुम भगवान का नाम जप कर, भगवान का हो करके नाम जप करते हैं, पर संसार के होकर, अपने माँ बाप के होकर, अपने स्त्री पुत्र के, भाई भौजाई के पक्ष में होकर, वो अपने ऐसा मानकर भजन करते हैं, भगवान मेरा है, मीरा माई की तरह। सज्जनों सुनना, ध्यान देना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, केवल मेरे भगवान है और कोई मेरा नहीं है। ऐसे उपाय करके आप अगर भजन में लग जाओ तो परमात्मा तुम्हें प्राप्ति हो जाए सुगमता से। इतनी सरल बात है, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है।